नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक में भी शामिल होंगे। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह मई में लगातार दूसरे महीने 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक। रूस ने अपने 5 हवाई ठिकानों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की पुष्टि की। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में मैग्नस कार्लसन को हराया। और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस से बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की संभावना है। पराग्वे के राष्ट्रपति आज से भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों सहित उच्च शिष्टमंडल भी है। राष्ट्रपति पलासियोस की ये पहली जबकि पराग्वे के किसी राष्ट्रपति की ये दूसरी भारत यात्रा है।
राष्ट्रपति पेना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे, जिसके दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और पराग्वे ने 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे दशकों से दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हुए। दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विकसित किया है। पराग्वे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां पराग्वे में मौजूद हैं। पराग्वे की कंपनियां भारत में भी मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में योगदान दे रही हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और मंगलवार को संपन्न होगी। एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें विमानन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विमानन ईंधन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के लिए वित्त पोषण और नवाचार इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के नेता विमानन क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के साक्षी बनेंगे। IATA की पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित हुई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। कल नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद व्याख्यान के 60 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्मृति संगोष्ठी में श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम होने और देश में लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन का जिक्र किया।
युद्ध का जब वातावरण था सीमा पे, मैंने अपने खाद्य भंडारों की समीक्षा की तो खेत में किसान और सीमा पे जवान डटा हुआ था और हमने देशवासियों से कहा था चिंता मत करो, भंडार भरपूर है। और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो खेती है।
श्री चौहान ने कहा कि हाल में धान की 2 नई किस्में विकसित की गई हैं, जिनसे उपज में 30% की वृद्धि होगी। इन किस्मों में पानी की 20% कम आवश्यकता होगी और ये 20 दिन पहले ही पक जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में कृषि विज्ञान केंद्र करगिल एक ने कृषि और संबद्ध विभागों के सहयोग से लगातार 3रे दिन विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत अभियान चलाया। ये पहल विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाना है। गृह मंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।
ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। यही बंगाल में चुनावी हिंसा, जिसमें चुनाव के वक्त सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए।
गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में हो रही अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति के बारे में कल चर्चा की। उन्होंने मॉनसून के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इस क्षेत्र को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बृहस्पतिवार तक गरज के साथ मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह लगातार दूसरे महीने 2,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार मई में कुल GST संग्रह 2,01,00,000 रुपए रहा, जो पिछले वर्ष मई में एकत्र 1,72,00,000 रुपए की तुलना में 16.4% अधिक है। मई में वर्ष दर वर्ष वृद्धि, आयात से एकत्र GST में 25.2% की उछाल और घरेलू लेन देन से 13.7% की वृद्धि के कारण हुई। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में मई में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लगातार दूसरे महीने निवेशकों का रुख सकारात्मक बना रहा। आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भारतीय शेयर बाजार में 19,860 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 19,615 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यूक्रेन ने कल रूस के 5 हवाई ठिकानों मर्मंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवा, रियाजान और अमूर पर जबरदस्त ड्रोन हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि कई विमानों में आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि 11 महीनों के इस अभियान में उसकी सुरक्षा सेवा SBU ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम TU-95 और TU-22 बम वर्षकों सहित लगभग 40 विमान नष्ट कर दिए। चंडीगढ़ में लोग ऑपरेशन सिंदूर के नायकों और पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की याद और कृतज्ञता में एकजुट हुए। कल शाम चंडीगढ़ में लोगों, शहीदों के परिवारों और अन्य लोगों ने सिंदूर का संदेश न भूलेंगे न माफ करेंगे शीर्षक से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके राष्ट्रीय एकजुटता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था।
1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा मजबूत तरीके से सुरक्षित एक पहाड़ी चोटी पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे, तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। ग्रेनेड के छर्रे लगने से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्टेन गन से दुश्मन की मीडियम मशीन गन टीम को तबाह कर उस मोर्चे पर कब्जा किया। खून से लथपथ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने दुश्मन पर लगातार हमला जारी रखा। जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और और एक खाई से दूसरी खाई में जाकर दुश्मन सैनिकों को संगीन से मार गिराया। लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे तभी उनके सिर में गोली लग गई, लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का यह अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प वीरता की एक मिसाल बना और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार 5 वर्ष के अंतराल के बाद नाथूला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने के लिए तैयार है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 15 जून को गंगटोक पहुंचेगा। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंच गई है। पंजाब किंग्स ने कल रात क्वालिफाइड 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर जीत हासिल की। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल में कल पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। उधर नॉर्वे के स्टारवेंजर में नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने कल रात विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। क्लासिकल गेम में गुकेश की कार्लसन पर यह पहली जीत है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीतकर भारत ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। और प्रो कबड्डी लीग के लिए टीमों की 2 दिवसीय नीलामी प्रक्रिया पिछले 2 दिनों में मुंबई में आयोजित की गई। पिछले सीजन में हरियाणा स्टीलर्स को खिताब जीतने में मदद करने वाले मोहम्मद रेजा शादलोई की सबसे बड़ी बोली लगी। उन्हें सीजन 12 के लिए गुजरात जायंट्स ने खरीदा। देवांग दलाल को भारतीय खिलाड़ी के रूप में सबसे बड़ी बोली मिली।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इसमें उपभोक्ता कानून, अधिकार और सुरक्षा विशेषज्ञ तथा कार्यकर्ता पुष्पा गिरिमाजी भाग लेंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद प्रियंका। अर्थव्यवस्था को जीएसटी का बूस्टर डोज, लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ पार होने को दैनिक जागरण और अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता का कहना है महंगाई के 4% के लक्ष्य से नीचे बने रहने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। पत्रों के अनुसार इससे अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ाने से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन द्वारा रूस के 41 विमान तबाह किए जाने को दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। पत्र ने लिखा है रूस ने 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी, 12 यूक्रेनी सैनिक मरे। हिंदुस्तान की सुर्खी है परमाणु विकिरण से बचाएगी स्वदेशी एंटीडोट, डीआरडीओ प्रयोगशाला ने विकसित किया, दवा नियामक ने भी मंजूरी दी, विदेश पर निर्भरता होगी कम। राजस्थान पत्रिका ने सराहनीय पहल शीर्षक से लिखा है तमिलनाडु में आंगनवाड़ी की शिक्षिका जैलानी ने मोबाइल की लत से उबार कर लौटाया कई मासूमों का बचपन, गायन शैली में समझाती है पाठ, अभिभावकों के चेहरे भी खिले।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलोसियस से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक में भी शामिल होंगे। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह मई में लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। रूस ने अपने 5 हवाई ठिकानों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की पुष्टि की। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में मैग्नस कार्लसन को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।